मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। परिसंघ की इकाइयों के बीच समन्वय की आवश्यकता। परिसंघीय प्रणाली में दो सरकारें होती है और उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। परिसंघीय राज्य व्यवस्था की सफलता और उसकी शक्ति इन दोनों सरकारों के बीच सहकार्य और समन्वय पर निर्भर करती है। इस विषय पर हम दो शीर्षों के अधीन विचार करेंगे, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच परस्पर संबंध। इस अध्याय में हम प्रथम पहलू पर विचार करेंगे और अंतर्राज्यिक संबंधों पर इसके बाद के अध्याय में। संघ के राज्यों पर नियंत्रण की पद्धति। इस विषय पर दो शीर्षों के अधीन विचार करना अच्छा होगा, एक आपात में, दूसरा सामान्य काल में। आपात में, यह हम पहले ही बता चुके हैं कि आपात में भारत के संविधान के अधीन सरकार इस प्रकार कार्य करती है मानो वह एकीकृत सरकार है। इस पहलू पर आगे अध्याय 28 में विस्तार से विचार किया जाएगा। दूसरा सामान्य काल में, सामान्य काल में भी संविधान में संघ द्वारा राज्यों पर नियंत्रण के तरीके निकाले गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य सरकारें संघ की विधायी और कार्यपालिक नीति में हस्तक्षेप न करें और साथ ही इकाइयों में दक्षता हो और वे शक्ति संपन्न हो, क्योंकि ऐसा हुए बिना संघ का सामर्थ्य टिक नहीं सकता। राज्यों के संबंध में ये नियंत्रण राष्ट्रपति में निहित कार्यपालिका और विधायी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, राज्यपालों को नियुक्त करने और पदच्युत करने की शक्ति, राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। दूसरा विधायी शक्तियाँ, उदाहरण के लिए राज्य विधानमंडल में विधान पुनः स्थापित करने के लिए पूर्व मंजूरी, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विनिर्दिष्ट विधान की अनुमति, विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में अध्यादेश बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से अनुदेश लेने की अपेक्षा, राज्यपाल द्वारा आरक्षित अन्य राज्य विधेयकों के बाबत वीटो की शक्ति। पूर्वगामी अध्याय में इनकी व्याख्या हो चुकी है, इसलिए इस अध्याय में हम संघ के नियंत्रण के विनिर्दिष्ट अभिकरण तक ही अपने विचार को सीमित रखेंगे, अर्थात प्रथम राज्य सरकार को निर्देश, द्वितीय संघ के कृत्यों का प्रत्यानोजन, तृतीय अखिल भारतीय सेवा, चतुर्थ सहायता अनुदान, पंचम अंतर राज्य परिषद, षष्ठ अंतर राज्य वाणिज्य आयोग। राज्य सरकारों को संघ द्वारा निर्देश। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना सच्ची परिसंघीय प्रणाली के लिए अपरिचित और विरोधास्पद है, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने यह विचार भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। यह हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए और विशिष्ट रूप से जिन परिस्थितियों में परिसंघ बना था उनको देखते हुए किया था। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि किन परिस्थितियों में और किन विषयों के संबंध में संघ द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाएगा। ऐसे अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने अधिशास्ति विहित की है, उन पर विचार करना शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान ने पूर्वगामी शक्तियों के अधीन निकाले गए निर्देशों के प्रवर्तन के लिए अधिशास्ति विहित की है, वह है अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा। अनुच्छेद 365 में इस प्रकार उपबंध है, निर्देशों के प्रवर्तन के लिए अधिशास्ति, जहाँ इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहाँ राज्य के लिए यह मानना विविधपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। और जैसे ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा करता है, वैसे ही वह उस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रूप में राज्य सरकार के कृत्यों को अपने हाथ में लेने का हकदार हो जाता है। कृत्यों का प्रत्यायोजन। जैसा पहले बताया जा चुका है कि राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति उस सरकार को किसी भी विषय से संबंधित संघ के कार्यपालक कृत्यों को सौंप सकता है। संसद संघ के विषय पर विधान बनाते हुए राज्य सरकार को और उनके अधिकारियों को, जहां तक वह अधिनियम उनके राज्य में लागू होता है, शक्तियों का प्रत्यानोजन करती है। इसके विपरीत राज्य सरकार भारत सरकार की सहमति से राज्य के विषयों की बाबत उस सरकार को प्रशासनिक कृत्य प्रदान करती है। जहाँ किसी भी सरकार को अपने प्रशासनिक कृत्य प्रत्यक्ष रूप से करना असुविधाजनक है, वहाँ वह सरकार अपने कृत्य दूसरी सरकार के माध्यम से निष्पादित करा सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि संघ और राज्यों के अधीन सेवारत व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी सेवाएं होंगी जो संघ और राज्यों के लिए सामान्य होंगी, उन्हें अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, जिनके विद्यमान उदाहरण हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। किंतु संविधान में इनके अतिरिक्त भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक भारतीय सेवाओं के लिए उपबंध कर सकेगी और ऐसी सेवा के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्ति की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था। अखिल भारतीय सेवाओं के इस उपबंध के पीछे उद्देश्य यह है कि परिसंघीय प्रणाली में आपसी संबंध घनिष्ठ हों और संघ और राज्य दोनों में ही प्रशासन में अधिकाधिक दक्षता आए। सहायता अनुदान। जैसा पहले बताया जा चुका है, संसद ऐसे राज्यों को जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ऐसे अनुदान दे सकेगी जैसा वह ठीक समझे। इन अनुदान के माध्यम से संघ विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के असंतुलन को ठीक कर सकेगा। इस प्रकार का असंतुलन देश के बहुआयामी विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। इन्हीं अनुदानों के माध्यम से संघ राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की कल्याणकारी स्कीमों पर नियंत्रण रखता है और उनमें समन्वय करता है। वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को अनुदान देने की इस साधारण शक्ति के अतिरिक्त संविधान में दो विषयों के लिए विनिर्दिष्ट अनुदान देने के लिए व्यवस्था की गई है। क, उन विकास स्कीमों के खर्चे को पूरा करने के लिए जो किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उठाने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए। ख, असम राज्य में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए उस राज्य को अनुदान। अंतर राज्य परिषद। राष्ट्रपति को अंतर राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो वह उसके स्थापना कर सकेगा। राष्ट्रपति को परिषद द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को परिनिश्चित करने की शक्ति दी गई है, किंतु संविधान में भी तीन कर्तव्य बताए गए हैं जो परिषद को सौंपे जा सकते हैं। इनमें से एक है राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जाँच करने और उन पर सलाह देने का कार्य। परिषद के अन्य कृत्य होंगे कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श। उदाहरणार्थ कृषि, वन, लोक स्वास्थ्य आदि के विषय में अनुसंधान और ऐसे विषयों से संबंधित नीति और कार्य के समन्वय की सिफारिश करना। इस शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति ने एक केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, एक केंद्रीय स्थानीय स्वायत्त परिषद और एक परिवहन विकास परिषद की स्थापना की है, जिसका प्रायोजन राज्यों की इन विषयों से संबंधित नीति में समन्वय करना है। वस्तुतः अंतर राज्य परिषद का प्राथमिक उद्देश्य समन्वय और परिसंघीय घनिष्ठता स्थापित करता है। इन छोटे छोटे निकायों का सृजन करते समय जिनका उद्देश्य विनिर्दिष्ट विषयों पर कार्य करना है, इस उद्देश्य को ओझल कर दिया गया है। इनका सृजन कानून निर्वाचन के इस नियम पर किया गया है कि परिषद का सृजन करने की शक्ति में एक से अधिक परिषदों का सृजन करना आता है। सरकारी आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की थी, जिसे अनुच्छेद 263 के खंड ख और ग में बताए गए कर्तव्य सौंपे जाएं। अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई। इस संघ के 6 मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वाधीनता से संबंधित संविधान के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रायोजन के लिए संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अमेरिका के अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग के समान कोई प्राधिकरण गठित करे और उसे ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंपे जो वह ठीक समझे, किंतु मार्च 1997 तक ऐसे किसी आयोग की स्थापना नहीं की गई। अखिल भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए संविधानितरण अवकरण। राज्यों पर संघ के नियंत्रण के लिए संवैधानिक अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि परिसंघीय शासन प्रणाली के होते हुए भी भारत का समन्वित विकास हो सके। इसके अतिरिक्त संघ के स्तर पर कुछ सलाहकार निकाय और सम्मेलन हैं, जिनसे राज्य के स्तर पर नीतियों का समन्वय होता है और विभिन्न राज्यों के बीच मतभेदों को समाप्त किया जाता है। इन निकायों में सर्वप्रथम है योजना आयोग। योजना आयोग। संविधान में विभिन्न प्रायोजनों के लिए विभिन्न आयोगों का उल्लेख है, किंतु उसमें कहीं भी योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। समवर्ती विधायी सूची में आर्थिक और सामाजिक योजना एक प्रविष्टि है। संघ की इस शक्ति का लाभ उठाकर संघ ने 1950 में बिना विधान बनाए एक योजना आयोग की स्थापना की। यह संविधानेतर और असंवैधानिक निकाय संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा बनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नेहरू उसके पहले अध्यक्ष थे और इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निमित्त संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था। इस निश्चित उद्देश्य से स्थापित इस आयोग के क्रियाकलाप में धीरे धीरे प्रशासन के सभी क्षेत्र आ गए हैं, केवल प्रतिरक्षा और विदेश कार्य ही बाहर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि एक आलोचक ने इसे संपूर्ण देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा है, जो प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है तथा जिसके कृत्य वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के कृत्यों का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका एक विशाल नौकरशाही संगठन बन गया है। पंडित नेहरू ने स्वयं कहा था, आयोग जो गंभीर चिंतकों का छोटा सा समूह था, अब भारत सरकार का एक विभाग बन गया है जिसमें सचिवों और निदेशकों की भीड़ लगी हुई है और उसका अपना एक विशाल भवन भी है। इन आलोचकों की राय में योजना आयोग ऐसा अभिकरण है जो परिसंघीय प्रणाली के अधीन राज्यों की स्वायत्तता पर प्रहार करता है। किसी निष्कर्ष पर आने से पहले हमें आयोग के प्रभाव की समुचित परीक्षा करनी चाहिए। आयोग का कार्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक संतुलित उपयोग के लिए योजना आयोग तैयार करना है, जिसके विकास की ऐसी प्रारंभिक प्रक्रिया हो जाएगी जो जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी और लोगों को नए अवसर प्रदान करेगी। यह स्पष्ट है कि आयोग का काम केवल योजना बनाना है, इन योजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य के हाथ में है, क्योंकि अधिकांश विकास राज्यों के विषयों के बारे में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संघ के स्तर पर योजना आयोग की बात बहुत वजन है, क्योंकि इसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री है। किंतु जहाँ तक राज्यों का संबंध है, आयोग की भूमिका सलाहकार की है। उसके जो भी प्रभाव हैं वह अप्रत्यक्ष हैं, क्योंकि राज्य चाहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित कर ली जाएं। ऐसा करने के पश्चात योजना आयोग के पास कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है जिससे वह योजना को क्रियान्वित करा सके। यदि राज्य इस प्रक्रम पर योजना आयोग द्वारा अधिकृत एकासी नीति का अनुसरण करते हैं तो वह इसलिए कि वे संघ से वित्तीय सहायता पाए बिना काम नहीं चला सकते। सही अर्थ में वित्तीय सहायता का लाभ उठाना स्वैच्छिक है, इसमें प्रपीड़न नहीं है। अमेरिका में भी परिसंघ के सहायता अनुदानों को परिसंघीय प्रणाली का विनाश करने वाला नहीं समझा जाता, यद्यपि अनेक आलोचकों के अनुसार इससे राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप होता है। किंतु इस आलोचना का औचित्य जान पड़ता है कि दो उच्च शक्ति संपन्न निकायों के अर्थात वित्त आयोग और योजना आयोग के स्थापित किए जाने में कार्य और उत्तरदायित्व की परस्पर व्याप्ति हो जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस पर टिप्पणी की है, वस्तुतः योजना व्यय और गैर योजना व्यय में कोई स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह विषमता इस कारण उत्पन्न हो गई है कि संविधान के निर्माताओं ने योजना आयोग जैसे निकाय के सृजन की कल्पना नहीं की थी। इसे बाद में कार्यपालिका के आदेश द्वारा स्थापित किया गया। चाहे जो भी हो, इन दोनों आयोगों के बीच समन्वय की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। अंतोगत्वा मंत्रिमंडल या राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे किसी निकाय को इस ओर ध्यान देना होगा। इन दोनों आयोगों को एकीकृत किया जाना चाहिए और इसके लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के कार्यकरण से एक और संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय की स्थापना करनी पड़ी है, वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। यह परिषद 1952 में योजना आयोग के अनुसंग के रूप में बनाई गई थी, जिसे राज्यों के योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके। संघ के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर बनी हुई इस परिषद के उद्देश्य हैं योजना के समर्थन में प्रयत्नों को गति देना और उन्हें मजबूत बनाना तथा संसाधनों का इस दृष्टि से उपयोग करना, सभी महत्व के क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों का प्रोन्नयन करना और देश के सभी भागों का संतुलित और त्वरित विकास सुनिश्चित करना। इसके अन्य विशिष्ट उद्देश्य हैं क समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन, ख राष्ट्रीय योजना में बताए गए लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना। 1967 के मध्य में संघ के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इस परिषद के सदस्य हैं। योजना आयोग के अतिरिक्त बहुत से वार्षिक सम्मेलन हैं जो संघ के तत्वावधान में किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य है राज्यों के क्षेत्र में समन्वय और समेकन करना। विनिर्दिष्ट समस्याओं पर सम्मेलन करने के अतिरिक्त कुछ उच्चतम स्तर पर वार्षिक सम्मेलन किए जाते हैं, जैसे राज्यपालों का सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, विधि मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन आदि। अंतर्राज्य और संघ राज्य संबंधों की दृष्टि से इनका भी बहुत अधिक महत्व है। ऐसे एपलबी ने संरक्षण किया था ऐसी संविदाओं के माध्यम से संघ इस उपमहाद्वीप में, जिसमें 25 स्वशासी राज्य है, अपना वर्चस्व रख सकेगा, संवैधानिक प्रपीड़न द्वारा नहीं। राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद भी एक संविधानेतर निकाय है जो 1986 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के जनकल्याण का कार्य करना है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसे 1990 में पुनर्जीवित किया। अब इसमें संघ के मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, श्रमिकों, महिलाओं, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भी हैं। इसकी पहली बैठक में विचारणीय विषय थे सांप्रदायिक सद्भाव, विघटनवादियों द्वारा हिंसा, पंजाब और कश्मीर की समस्या, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद। संघ और राज्यों के बीच सहयोग। परिसंघीय नियंत्रण के अभिकरणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनसे अधिकारिता का अनावश्यक संघर्ष हुए बिना संघ और राज्यों की सरकार के बीच कार्य सुचारू रूप से चलता है। ये हैं, प्रथम, कृत्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन, द्वितीय, पारस्परिक कराधान से उन्मुक्ति। क, कृत्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन। जैसा हम पहले बता चुके हैं, हमारे संविधान में विधायी शक्तियों और कार्यपालिका शक्ति दोनों का ही लगभग एक ही प्रकार से संघ और राज्यों के बीच वितरण किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य संघ के विषय की बाबत प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम नहीं है और संघ किसी राज्य के कृत्यों का प्रशासन नहीं कर सकता, जब तक कि उन्हें संविधान के किसी उपबंध के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत न किया जाए। प्रशासनिक विषयों में इस प्रकार के कठोर विभाजन से कभी कभी गतिरोध हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए संविधान ने कुछ उपबंध बनाए हैं जिनसे संघ और राज्यों को अपने अपने प्रशासनिक कृत्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन करने की शक्ति दी गई है। ख, संघ के कृत्यों के प्रत्यायोजन के बारे में दो ढंग हैं। प्रथम, राष्ट्रपति राज्य की सहमति से बिना विधायी मंजूरी के कोई भी कार्यपालिका कृत्य किसी राज्य को सौंप सकता है। द्वितीय, संसद राज्य की सहमति के बिना संघ के किसी विषय के बारे में विधान बनाते समय ऐसे विषय के संबंध में राज्य या उसके अधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकती है। संक्षेप में, ऐसे प्रत्यायोजन का कानूनी आधार होगा। ग, इसके विपरीत किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य के किसी विषय के संबंध में उस राज्य की सीमा के भीतर कोई कृत्य संघ सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है। ई, पारस्परिक कराधान से मुक्ति। परिसंघ प्रणाली के उचित कार्यकरण के लिए पारस्परिक उन्मुक्ति की आवश्यकता। परिसंघ संविधान दो सरकारों वाली प्रणाली को स्थापित करता है, पर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सरकार की सहमति को दूसरे सरकार के कराधान से उन्मुक्ति हो। परिसंघ संविधान में इस बात पर कुछ मतभेद है कि यह उन्मुक्ति कितनी दी जाए, किंतु इस सिद्धांत पर सहमति है कि कराधान से पारस्परिक उन्मुक्ति के कारण दोनों सरकारों के बीच करों के निर्धारण, परिकलन और लेखा रखने में बहुत सा व्यर्थ का श्रम बच जाएगा। हमारे संविधान में यह अनुच्छेद 285 और 289 का विषय है। यह अनुच्छेद क्रमशः संघ और राज्य की उन्मुक्ति के संबंध में है। संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी। राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट। इसी प्रकार राज्य की संपत्ति को संघ के कराधान से छूट है, किंतु यह उन्मुक्ति, जैसा कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है, संघ के सभी करों से नहीं है। यह ऐसे करों तक सीमित है जो संपत्ति पर उद्घृत किए हैं। राज्य को सीमा शुल्क से छूट नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति पर अधिरोपित नहीं किया जाता है, माल के आयात या निर्यात पर होता है। राज्य की संपत्ति ही नहीं, उसकी आय को भी संघ के कराधान से छूट है। यह छूट राज्य सरकार तक सीमित है, राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को यह छूट नहीं है। राज्य की आय की यह छूट किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप से उद्भूत होने वाली आय के बारे में नहीं है। ऐसी आय संघ के अध्यारोही शक्ति के अधीन होगी। जैसे, क, सामान्यतया वाणिज्यिक क्रियाकलाप से राज्य को होने वाली आय को संघ द्वारा उद्घृत आयकर से छूट होगी। संसद वाणिज्यिक कार्यकलाप से राज्य को होने वाली आय पर कर लगा सकती है। यदि संसद किसी प्रकटतः व्यापारिक कृत्य को सरकार के सामान्य कृत्य का अनुषंगी कृत्य घोषित करती है, तो ऐसे कृत्य से होने वाली आय जब तक यह घोषणा बनी रहती है तब तक कराधेय नहीं होगी। अध्याय समाप्त।